ओम शांति। कल की बाबा की मुरली में दो बहुत अच्छे महावाक्य हैं, उन पे हम चर्चा करें। एक था, जो स्वमान में रहते हैं, बोलो आगे, उन्हें भगवान भी सम्मान देते हैं। स्वमानधारी बच्चों को स्वयं भगवान भी सम्मान देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्वमान का कितना बड़ा महत्व है। उसके महत्व को समझते हुए हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। ये मुरली तब की है जब पंजाब में उग्रवाद था बहुत ज्यादा। जो छोटे हैं वो तो नहीं जानते, बड़े सब जानते हैं। तो वहां का ग्रुप आया था, बाबा उनमें बल भर रहे थे, निर्भय होकर रहो, पंजाब के शेर हो। एक बहुत अच्छी बात, जो बाबा की याद में है वो सदा सेफ हैं। ये बात तो भूलनी नहीं चाहिए, ये हमारे जीवन की रोज की चीज है। जो याद में है वो सेफ हैं। और एक पावरफुल महावाक्य था, हाँ इसमें ही वो था कि वो बाप की छत्र छाया में इसलिए सेफ हैं। जो अचल अडोल रहते हैं उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कितने पावरफुल महावाक्य हैं ये। क्या रहस्य है इसमें कि जो अचल अडोल होंगे उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। और अचल अडोल अवस्था जो बहुत ऊंची अवस्था है, छोटी नहीं, उसे पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तीन क्वेश्चन आए हैं। जो भाई 10-15 साल से बाबा से मिला हो, उसे कोई अनुभव न होता हो, क्या वो भी सतयुग में आने के लायक है? उत्तर आप देंगे, है। बिना अनुभव के भाई 15 साल से बाबा से मिलता है हर साल, लेकिन अनुभव कुछ नहीं हुआ तो सतयुग में तो आ जाएंगे, परंतु उनके द्वारा भी किसी को कोई अनुभव नहीं होगा। समझ गए ना? वो इतना नीचे होंगे। 9 निधियां कौन सी हैं जो बाबा ने हमें दी हैं? निधि माना खजाने, शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं 8 सिद्धियां, 9 निधियां। आप खुद चिंतन करके निकाल सकते हैं। सबसे पहला खजाना ज्ञान का खजाना, दूसरा संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, प्योरिटी का खजाना, बोलते जाओ, शक्तियों का खजाना, श्वासों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, समय भी आ गया उसमें, ये सब अलौकिक जो हमारे खजाने हैं, इन्हीं का गायन है। स्थूल खजानों का गायन नहीं है ये बिल्कुल सूक्ष्म जो हमारे अलौकिक खजाने हैं, अतिंद्रिय सुखों का खजाना, इन सब खजानों का ये गायन है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापुर आता है, तो बीच में क्या होता है, क्या वहां पर भी भूकंप आदि आते हैं? सतयुग के बाद तो भूकंप नहीं आते, लेकिन त्रेता के अंत में भूकंप आते हैं, जिससे सोने की सारी नगरी मिट्टी की नगरी में बदल जाती है। कुछ नीचे का ऊपर, सब कुछ नष्ट नहीं होता एक साथ, पर ऐसा प्राकृतिक प्रकोप होता है कि सीजन बदल जाते हैं, ग्रहों की स्थिति बदल जाती है, प्रकृति की स्थिति बदल जाती है, और उसका कारण होता है इम्प्योरिटी आना। अब इम्प्योरिटी जब प्योरिटी में बदलती है तो भी भूकंप आते हैं, और जब प्योरिटी इम्प्योरिटी में बदलती है तो भी। तो प्योरिटी हम इस संसार के परिवर्तन का बहुत बड़ा आधार है। इस समय प्योरिटी के साथ दूसरा भी बल जुड़ा हुआ है, कौन सा? योग बल। इसलिए भूकंपों के साथ स्थापना का कार्य भी हो जाता है। बाबा हमेशा कहते हैं, तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हो। प्रकृति का संपूर्ण परिवर्तन प्योरिटी के बल से होता है और योग बल से राजधानी स्थापित होती है, दोनों जुड़े हुए भी हैं। तो इस सतयुग में तो वो आ जाएंगे जिनको अनुभव नहीं है, लेकिन पद बहुत कम हो जाएगा। उन्हें चेक कर लेना चाहिए कि हमें अनुभव क्यों नहीं होते। सूक्ष्म बात हो सकती है कुछ, कोई पाप, सूक्ष्म पाप किसी जन्म का अनुभव में बाधा डाल रहा हो, कोई अपनी इम्प्योरिटी अनुभव न होने देती हो, कोई मन में सूक्ष्म संशय का संकल्प अनुभव न होने देता हो। बाबा से जब मिलने जाते हैं तब अपनी स्थिति अच्छी न बना पाते हो, ये सब कारण बनते हैं अनुभव न होने के। कईयों के साथ ऐसा भी हो चुका है कि उन्हें बाबा के आने के अलावा बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन जब बाबा आते हैं तब नहीं होते। ये भी दो चार के अनुभव नहीं, कम से कम 10% लोग सभा में बैठे हुए ऐसे होते हैं कि जब वो बाबा के आने से पहले बहुत अच्छा योग कर रहे होते हैं तब उन्हें बहुत सुख नशा खुशी रहती है, और जब बाबा आ जाता है ये सब लोप हो जाती है। मेरे पास क्योंकि लोग आते हैं ऐसे प्रश्न लेकर, प्रैक्टिकल अपनी बात बताते हैं, तो मुझे पता चलता है कि ऐसा ऐसा होता है। क्यों होता है उसके पीछे पता चलता है जब उनसे विस्तार से बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं संशय का संकल्प, कोई ना कोई अवज्ञा, इम्प्योरिटी या पूर्व जन्मों का सामने आया हुआ सूक्ष्म पाप। मैं एक अनुभव सुनाया करता हूँ, अनुभव तो बहुत हैं, पर यह अनुभव बहुत ही सुंदर था। एक विदेश की बहन ऐसे ही 3 साल पहले का है ये, उसने मेरे से यही प्रश्न पूछा कि 10 साल से मैं आ रही हूँ बाबा से हर बार मिलने, लेकिन मुझे बाबा से कोई अनुभव नहीं होता। मैंने उसकी कुछ बातें उससे पूछी और पता चला कि उसके पीछे विघन क्या है। ये बहुत अच्छी बात है जिसका प्रयोग, जिसका अभ्यास हम सब भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव था जिससे हमें सूक्ष्म बातों का पता चल जाता है। मैंने उससे कुछ बातें पूछी और स्पष्ट हो गया कि वो अपने पिछले जन्मों में काफी क्रिमिनल रही है, आत्मा हिंसक, जिसके द्वारा बहुतों को दुख मिला है। तो मैंने उसको एक छोटी सी विधि बताई 3 दिन के लिए, कि रोज सवेरे उठकर छत पे चली जाना और उन सभी आत्माओं का आह्वान करना जिनको आपके द्वारा बहुत दुख मिला है, और फिर बाबा को याद करते हुए उन सभी से क्षमा मांगना। पहले दिन करते ही उसे बहुत शांति हो गई। 3 दिन किया उसने और बाबा आए, फिर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उसका जो ब्लॉकेज था, जो बाधा थी, एक रुकावट थी, वो समाप्त हो गई। तो ये जो पाप कर्म है ये आत्मा को बड़े सूक्ष्म रूप से बांधे हुए हैं। हमें उनका पता तो नहीं चलेगा, पर कुछ चीजों को हम अपने सूक्ष्म ज्ञान से समझ सकते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी एक चीज जिस पर बाबा हमें रोज ध्यान दिलाता है, दूसरों को दुख न दो, दुआएं लो। दुआएं लेना सबसे बड़ा पुण्य और दुख देना सबसे बड़ा पाप। जैसे भगवानोवाच में काम महाशत्रु है, वैसे ही दूसरा पाप दुख देना है। जिन आत्माओं ने दुख बहुत दिया है उनको यहाँ अनुभव नहीं होते, इसलिए अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सुख देना पड़ेगा। लोग योग अभ्यास की ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत इसलिए लगती है कि सुख के देने से जो दुआएं मिलनी चाहिए उसकी कमी पड़ रही है। सुख देकर पुण्य का खाता बढ़ाएंगे तो योग बहुत अच्छा लगेगा, सहज लगेगा, बाबा की समीपता का, साथ का और सहयोग का अनुभव होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है तीनों। बाबा हमारे पास आया है, उसका साथ, उसकी समीपता और उसके सहयोग का अनुभव होने लगे। तो जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, भगवान भी उन्हें सम्मान देते हैं। बाकी सब तो देंगे ही, बीज सम्मान देने लगा तो प्रकृति भी सम्मान देगी। जब प्रकृति भयंकर विनाश कर रही होगी तब ऐसी आत्माओं को वो सम्मान देगी, सुरक्षित करेगी, सब कुछ प्राप्त कराएगी। ऐसी आत्माओं को कोई कष्ट नहीं होगा। मान लो जैसे हम सब जानते हैं हमारे यहाँ पानी की कमी रही, यदि हम अच्छे स्वमान में रहते होंगे तो कमी नहीं रहेगी, कमी होते भी हमें प्राप्त होता रहेगा। तो हम अपने स्वमान के अभ्यास को बढ़ाएंगे। संसार में बहुत बहुत क्या सभी लोग मान सम्मान के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत काम तो मनुष्य मान सम्मान के लिए करता है, बहुत पैसे खर्च करता है मान सम्मान के लिए। किसी बाप को चार बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है तो वो खर्च किस लक्ष्य से करेगा, नाम हो जाए। ये नहीं ये कहें पड़ोसी ने तो 4 लाख खर्च किए थे, इसने 2 ही किए, ये गरीब है, कर्ज लेके भी खर्च करेगा। करती है माताएं ऐसा, करती है ना, माताओं को अनुभव है बहुत, करते हैं गृहस्थी लोग। मान के लिए कर्जदार बन जाते हैं, मान के लिए धर्म को भी छोड़ देते हैं, नैतिकता को भी छोड़ देते हैं, चरित्र को भी छोड़ देते हैं कलयुग के अंत में। और हमें मान बिल्कुल सहज मिलता है, रियल मिलता है, बनावटी नहीं, अल्पकालीन नहीं, स्वमान के द्वारा। तो हमें स्वमान पर बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं स्वमान के महत्व को कम समझती हैं। हम बहुतों से मिलते हैं, कई बड़े बड़ों से बात करते हैं, वो कहते हैं स्वमान क्या, क्या होता है स्वमान, ये मैं आत्मा हूं काफी हो गया ना, और क्या चक्कर में पड़ना है ज्यादा, इतना ही काफी है। बाबा ने तो कहा अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, फाइनल डेफिनेशन है योग की। बाकी स्वमान तुम पता नहीं कहां से ले आए हो। मैं उनसे पूछता भाई मैं थोड़ा ही लाया हूं कहीं से, तो पढ़ लो ना भगवान क्या कह रहा है। तो आज की पॉइंट मैंने भी नोट करके रख ली डेट सहित कल की, आप भी नोट कर ले। जो ऐसा कहते हैं कि स्वमान आदि की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मुरली देना कि भाई लो ये भगवान वाच है, उसे ही बताओगे तुम ये क्या कह रहे हो, इसकी तो जरूरत नहीं है। स्वमान का अर्थ है अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। कल की मुरली में ही सत्यता की शक्ति पर बहुत बात थी ना। हम यदि अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो हमारे पास बहुत शक्तियां आती हैं। यही सत्यता की शक्ति हमें अचल अडोल रखती है। सत्यता की शक्ति, केवल सच बोलने की शक्ति नहीं, सच बोलने वाले भी आपने देखे होंगे संसार में, थोड़े लोग तो हैं। एक बूढ़ा आया हुआ हमारे पास, बिल्कुल गांव का किसान, मेरे से कह रहा आज मैं भी भट्टी में जाऊं, बहुत भोला है। मैंने पूछा तुम्हारी युगल, कि वो तो ज्ञान में नहीं चलती। मैंने उसे कहा ये तो युगलों की भट्टी है भाई, सिंगल की तो नहीं है, पता नहीं राम श्लोक तुम्हें जगह देगा या नहीं। फिर मैंने उसको कहा तुम बता देना ना मेरी युगल आई नहीं है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भट्टी मिले या ना मिले, मैं देखा ये बूढ़ा गांव का बिना पढ़ा लिखा भोला सा, इसमें सच के लिए कितना प्यार है। और यही बात किसी और को कहें तो फट से कह देगा बिल्कुल ठीक है, हमारी युगल ज्ञान में तो है पर बच्चों को संभाल रही घर में, वो ज्ञान में हो या ना हो। तो सच बोलने वाले भी तो हैं संसार में कलयुग के अंत में। सत्य संपूर्ण रूप से तो लोप नहीं होता, पर बाबा हमें ले चलता है सत्यता की शक्ति में। कलयुग के अंत में तो सत्यता कमजोर पड़ गई है, सत्यता को संघर्ष सहना पड़ता है, सत्यता के मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं, सत्यता के लिए मनुष्य को बहुत कड़वे अनुभव होते हैं। एक बार सच बोल दिया, आजकल कोर्ट में यदि कोई सच गवाही दे दे क्या किया जाता है उसके साथ, उसको या तो घर जाने ही नहीं दिया जाता वापस, या आने नहीं दिया जाता कोर्ट में, पहले ही मार दिया जाता है कि तुम कलयुग में सत्यवादी हरिश्चंद्र कहां से आ गए। कोर्ट्स में ये बहुत चलता है, या ऐसा नहीं कर सकते तो उसे पैसा दे के हटा दिया जाता है कि चुप रहो बस बोलना नहीं, पैसा ले लो जितना चाहिए। बाबा हम सभी को ले चलता है सत्यता की शक्ति की ओर, और वो प्राप्त होगी आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होने से, परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने से, सत्य कर्मों से। ये जो सत्य ज्ञान मिला है हमें, उसके द्वारा ये सब आधार बनेंगे जो हमें सत्यता की शक्ति देंगे, और इससे हम अचल अड़ोल होंगे। अड़ोलता बहुत बड़ी चीज है, उसकी निशानी कल बाबा ने बताई सांप पर, डांस किया सांप को से सैया बना लिया, चारों लहरें हैं। बाबा पहले से ये बात कहते थे कि ये विष्णु का जो चित्र है ये तुम्हारी यादगार है, सागर में चारों तूफान तेज लहरें, लेकिन विष्णु से सैया पर संपूर्ण रूप से निश्चल मगन मगन, उसे पता ही नहीं कि लहरें भी हैं क्या, उसे पता ही नहीं कि सांप भी है क्या, मगन। ये है अचल अड़ोल स्थिति। तो हम स्वमान पर विशेष ध्यान दें। बाबा ने हम सभी के बारे में हमें जो जो बातें कही हैं उन पर चिंतन करें, कैसे स्वमान में हम आते हैं, जो कुछ कहा है उसके चिंतन के द्वारा हमें नशा होने लगे। बहुत पहली पहली सिंपल बातें भी कही हैं, और वो बातें फिर बढ़ती बढ़ती बहुत ऊंची भी हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, भगवान तुम्हें पढ़ाने आया है, ये रोज साकार मुरलियों ने सुना। तुम महान आत्माएं हो, इस पे हम चिंतन करेंगे क्यों महान हैं हम। तुम शिव शक्तियां हो, तुम पूज्य हो, इष्ट देव हो, इन पे हम चिंतन करें। चिंतन से नशा चढ़ेगा, फिर स्मृति से स्वरूप बनने लगेगा। पहले चिंतन, फिर नशा, फिर बस उसको स्मृति में लाएंगे और स्वरूप बनेगा। ये बहुत अच्छा स्वरूप है कि तुम इष्ट देव देवियां हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। चिंतन करें हम इस पर, हम वही हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम वही हैं इसे हमारी हमारा अंतर मन स्वीकार करे, अंदर ले चले इसे कि सच है, जिनकी पूजा हो रही है वो हम हैं। पहले स्वीकार कराएं हम अपने अंतर विवेक में, भरेंगे इसे फिर नशा चढ़ेगा, स्मृति लाते स्वरूप बन जाएगा। चिंतन बहुत अच्छी चीज है। इष्ट देवियां क्या करती हैं, चिंतन का एक तरीका। इष्ट देवियां सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसलिए हम इष्ट देवी हैं, इसलिए हमें भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। इसके लिए अपनी सभी मनोकामनाओं को त्याग कर देना है। जो मनोकामनाओं से मुक्त हो गए वो दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाएंगे। इस तरह चिंतन को आगे बढ़ाओ, इस देवियों की दृष्टि से दूसरों को क्या मिलता है, दृष्टि से स्नेह मिलता है, इसलिए तो मां कहते हैं ना उन्हें, स्नेह मिलता है। तो हमारी जड़ मूर्तियों की भी यादगार है कि उनसे स्नेह मिल रहा है, तो हमसे भी सबको स्नेह मिले, घृणा ईर्षा द्वेष ये सब न मिले। चिंतन इस तरह हम आगे बढ़ाएंगे। इस देव देवियां विघ्न विनाशक होती हैं, सिद्धि दाता होती हैं। तो हम यहाँ हैं तब तो हमारी मूर्तियों से ये अनुभव होता है ना, या बिना हुए हो जाएगा, हमने यहाँ कुछ न किया हो, दूसरों को दुआएं न दी हो, तो भक्ति में हमारी मूर्तियों से किसी को दुआएं मिलेंगे? नहीं मिलेंगी। हमने यहाँ दुआएं दी हैं और अपने अंदर दुआओं के भंडार भरे हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस हमारी मूर्तियों के द्वारा भी फैलते हैं। भावना हो गई वो, इस तरह चिंतन से हम अपने को स्वमान की ओर ले चले। सबसे बड़े स्वमान कौन से हैं हमारे? इससे बड़ा मैं बाप समान हूं, और उससे थोड़ा सा छोटा वो भी बहुत बड़ा है, मैं पूर्वज हूं। और ऐसे ही ये सब बड़े हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, इष्ट देव देविया, ये सब बड़े स्वमान हैं। लेकिन इन तक पहुंचने के लिए पहले ये जो छोटे छोटे स्वमान हैं, इनका अभ्यास होना चाहिए। बाप समान और पूर्वज का नशा हरेक को नहीं चढ़ता, उससे पहले ये नशा हो मैं महान हूं, इष्ट देव हूं, फिर नशा आगे बढ़ेगा, स्वरूप बनता जाएगा। इसमें समय अवश्य लगता है, अंत में ही ये हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने लंबा काल इसको अभ्यास में लाया होगा वो ही स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। क्या चाहिए हमारे पास? सबसे पहले कौन सी चीज मदद करेगी? ज्ञान का बल, केवल योग का बल नहीं, ज्ञान का बल। जिन आत्माओं के पास योग का बल और ज्ञान का बल दोनों हैं, वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अचल अडोल रह सकते हैं। अकेला योग का बल भी नहीं, अकेला ज्ञान का बल भी नहीं। हम अपने पास ज्ञान की कुछ पॉइंट्स रखें जिनका अभ्यास करें। प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें अचल अडोल होने की। किसी किसी को फीलिंग बहुत आती है, वो अचल अडोल नहीं हो सकते। जिनको बात बात में फीलिंग आती है, जो छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बात में रूस जाते हैं छोटे बच्चों की तरह, जिनका छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाता है, जिनकी इच्छाएं पूरी न हुई तो खुशी गुम हो जाती है, ये स्थिति है सबसे छोटी, बिल्कुल लोवेस्ट। इनसे हमें बाहर निकलना है पहले। इसके लिए हम ज्ञान का अच्छा अभ्यास रखें। तो पहले हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएं ज्ञान के अभ्यास से, कि हमारी खुशी कोई दूसरा नहीं छीन सके, किसी के शब्द हमें डोलाए न सके, किसी का गलत व्यवहार हमारी स्थिति को बिगाड़ न दे। ज्ञान के बल से हम फिर इस स्थिति पर पहुंचेंगे, और इसमें बहुत अच्छे अनुभवों के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। दो अभ्यास बहुत काम आते हैं अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए। एक योग का अभ्यास है उसमें कि मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। सिंहासन पर अपने को देखें। आप कहेंगे इसका अचल अडोल स्थिति से क्या लेना देना? सिंहासन पर हम स्थित होंगे तो राजा ही जैसा बल हमें प्राप्त होता रहेगा, हम राजा बनते जाएंगे। और फिर छोटी छोटी बातें, कर्मेंद्रियों के रस हमें हिलाएंगे नहीं। और दूसरा अभ्यास है साक्षी भाव का, वो तो बहुत बड़ा अभ्यास है, उसके लिए लंबे समय का अभ्यास भी चाहिए। और ड्रामा के बारे में, हर एक्टर्स के बारे में हमारे पास ज्ञान इमर्ज रहे। ड्रामा बना बनाया है हम सब जानते हैं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ये भी जानते हैं, लेकिन समय पर यही चीज हमारे लिए शस्त्र बन जाए, उसकी हमें प्रैक्टिस रखनी चाहिए, उसको प्रयोग में ला के देखना चाहिए। सबसे पहले हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, इस चिंतन के द्वारा हम पर चिंतन से मुक्त करें अपने को। रोज प्रैक्टिस करें, दो चार बार इस महावाक्य को स्मृति में लाएं और पर चिंतन को हटाएं, तो धीरे धीरे साक्षी भाव भाव बढ़ेगा और हम अचल अडोल हो जाएंगे। बाबा के कुछ महावाक्य भी हमें याद रख लेने चाहिए। मैंने बहुत पहले से एक महावाक्य सुना बाबा का, अब सबको भी याद आ जाएगा। वो परफेक्ट अर्थात नो इफेक्ट, बियॉन्ड इफेक्ट। परफेक्शन का अर्थ है, संपूर्णता का अर्थ है फीलिंग प्रूफ हो जाए पूरी तरह, कोई फीलिंग नहीं, न वातावरण का इफेक्ट, न किसी मनुष्य का इफेक्ट, न किसी के बोल का इफेक्ट, न किसी के व्यवहार का इफेक्ट, न कर्म का इफेक्ट, न कर्म के परिणाम का इफेक्ट, न सर्दी का न गर्मी का। ये नहीं कि उसे सर्दी नहीं लगेगी कपड़े उतार दिए जाए, न सर्दी का इफेक्ट न गर्मी का। क्या मतलब है इसका? सन्यासियों ने इसी को मोटे रूप से ले लिया तो बेचारे सर्दी में जाके बैठ जाते हैं, देखे होंगे आपने, गर्म रेत में जाके बैठ जाते हैं इफेक्ट न हो, ठंड में बिल्कुल गंगा के किनारे जहां बहुत ठंड होती है ठंडी रेत पर बैठ जाते हैं जाके। लेकिन इसका अर्थ है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी चाहे तूफानी बरसात, लेकिन हमारे मन की स्थिति को बिगाड़े नहीं। शरीर पे तो उसका इफेक्ट आ सकता है लेकिन मन की स्थिति को विचलित न करे। तो ज्ञान का ये एक महावाक्य कि हमें संपूर्ण बनना है तो किसी भी इफेक्ट से स्वयं को ऊपर ले जाना है, और उसमें भी एक ही बात कि दूसरे के बोल के इफेक्ट से ऊपर निकल जाए। बाकी सब इफेक्ट तो छोटे हैं, दूसरे का बोल हमें प्रभाव न डाल दे। क्या धारणा चाहिए इसके लिए? क्या धारणा चाहिए? सहनशीलता बहुत चाहिए और सरलता। आज की मुरली में था ना शायद कल, सरलता। सरलता बहुत चाहिए और क्या चाहिए? एक छोटी सी प्रैक्टिस हम सबको करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में दूसरे के शब्दों को ज्यादा महत्व देते हैं। इसने ये बोला मैं तो अच्छा हूं, ये मुझे खराब समझते हैं, सोचना शुरू। जो लोग कहते हैं हमारा ज्ञान चिंतन नहीं होता, उनका इतना चिंतन चलता है इस पे, मैं पूछा करता हूं ये चिंतन कैसे चला? वो कहते हैं ज्ञान चिंतन होता ही नहीं, क्या करे। लेकिन कोई गलत शब्द बोल गया तो चिंतन ही चिंतन है, वो भी तो चिंतन ही है ना। तो मन में चिंतन करने की शक्ति है, चाहे उसको निगेटिव किया जा रहा है, चिंतन करने की शक्ति है। हम दूसरे के बोल को सीरियसली लेते हैं, अरे इसने मुझे ये कह दिया, क्या सोचना चाहिए यहां? एक तो बाबा ने क्या कहा, दूसरा एक बहुत अच्छा चिंतन हम कर ले। सत्यता की शक्ति से जुड़ी हुई बात है ये कि हम जो कुछ हैं वो तो हम हैं, उसे हम भी जानते हैं और जिसे हम बताना चाहते हैं वो भी जानता है। बाकी यदि कुछ मनुष्य नहीं जानते तो हम परेशान क्यों? इस संसार को हम अच्छी तरह देख लें, मनुष्यों की मेंटलिटी, उनका दृष्टिकोण, उसको हम अच्छी तरह समझ लें। संसार में यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे सब सर्टिफिकेट दे दें कि मैं बहुत अच्छा हूं, मिल सकता है? क्यों? हम बहुत अच्छे तो हैं हरीश, क्या हुआ, क्यों नहीं मिलेगा? ब्रह्मा भी उतर आए तो क्या हो जाएगा, संसार बदलेगा नहीं? बदल तो गया। इसमें यह है कि मनुष्य की मेंटलिटी, उसका दृष्टिकोण, इसमें एक चीज समा गई है, वो है स्वार्थ। स्वार्थ पूरा नहीं होता चाहे वो शिव बाबा भी क्यों ना हो, उसे भी छोड़ने के लिए तैयार। देखते हैं ना हम लोग, नीचे एक शंकर पार्टी वाला आ गया, कह रहे तुम्हारे यहाँ तो भगवान से मिलने के लिए 1000 रुपए देने पड़ते हैं, चलो मैं मिला हूँ 30 रुपए में तुम्हें भगवान से। और ये जो महापुरुष थे चल दिए उसके साथ के, ठीक कहता है ये। उसका भी बुद्धि इतनी थी उसके पास, 30 रुपए की थी बस, उससे ज्यादा नहीं थी। वो बाबा को जो 200 बार मिला है वो अनुभव उसका गुम, और 30 रुपए में भगवान से मिलने के लिए शंकर जी के पास पहुंच गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि ये सब क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। कोई इधर से जाने की कोशिश करे शंकर जी के पास मिलने के लिए कि भगवान 30 रुपए में मिलता है, उधर तो इधर ये ब्रह्मा कुमारियां बहुत ज्यादा पैसा लेती हैं भगवान से मिलने के लिए। तो ये सब क्या है, उनमें शिव बाबा नहीं आता। शिव बाबा ने तो कह दिया मैं कहां आता हूं, उनमें कौन आता होगा, आता जरूर है। इस संसार में आजकल ऊपर सूक्ष्म जगत में कुछ अच्छी आत्माएं भी विचरण करती हैं, कुछ सन्यासियों की, जिन्हें मुक्ति तो मिलती नहीं क्योंकि मुक्ति का गेट खुलता नहीं है। तो ये कुछ अच्छी आत्माएं ऐसे मीडियम में प्रवेश करने लगती हैं और ये दिखा देती हैं कि हम शिव बाबा हैं, बस यही है और कुछ नहीं। मेरे पास भी कई शंकर पार्टी वाले आए, मैंने उनसे पूछा कि शिव बाबा वहां आता है तो शिव बाबा जब आएगा कुछ सुनाएगा तो सही, वो मुरली तो ले आओ जरा दो चार, मुरली नहीं, मुरली यही। तो इस तरह का धोखा मनुष्यों को बहुत हो जाता है कि अपने सत्य अनुभव को छोड़कर दूसरों के असत्य अनुभव के पीछे चलने लगते हैं। ये उनके साथ भी होता है, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं कि जिन्हें भटकने की आदत है ना, भगवान से मिलने के बाद भी भटकने में सुख मिलता है ना, तो वो भटकते ही रहेंगे कि चलो इधर तो शिव बाबा को देख लिया, अब कहीं और आता उसे भी देखाएं, कहीं कुछ अच्छे लड्डू मिलते हो वहां। तो हम सभी अपनी सत्यता की शक्ति में स्थिर हो जाएं। जब हमारे अपने अनुभव अच्छे हैं, जब हम अपने को जान चुके, तो दूसरों के शब्दों पर सीरियसली चिंतन करके अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इस पर यदि हम वर्क करें तो हमारे जीवन में बहुत चल अडोलता आ जाएगी, ठीक है ना। हम जान चुके ना अपने को, हम क्या हैं। बाबा शुरू में थे, बाबा का जीवन पवित्र था, लोग उल्टा सुल्टा बोलते थे, आर्य समाजी बहुत, आप उनके शब्द सुने तो सुन नहीं सकेंगे, बाबा के लिए खराब खराब शब्द बोलते थे, परंतु बाबा जैसे सुनता ही नहीं उनकी बात, क्यों, क्योंकि उसे पता है ना मैं क्या हूं, श्री कृष्ण की आत्मा हूं, संसार की सबसे महान आत्मा हूं, वो आत्मा जिसके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया है। तो किसी आर्य समाजी की गाली उसको क्या असर डालेगी। हम यदि अपने को ठीक से जानते जाएंगे तो दूसरों के गलत शब्द, दूसरों के गलत व्यवहार हमें हिला नहीं सकेंगे। ऐसे कुछ ज्ञान के पॉइंट्स अपने पास रखते हुए अचल अडोल होंगे तो बहुत अच्छा होगा। स्वमान का अभ्यास भी इसमें हमें मदद करेगा। और ये स्लोगन सभी याद रखेंगे, स्वमान धारी आत्मा को स्वयं भगवान भी सम्मान देते हैं। इसलिए सवेरे उठते ही, कल सवेरे उठते ही अपने को अच्छे स्वमान में स्थित करेंगे, कौन हूं मैं, बोलो कल उठते ही क्या करेंगे, कौन हूं मैं, इष्ट देवी, ठीक है, इष्ट देव और इष्ट देवी, मंदिर में जिनकी पूजा हो रही है वो मैं हूं, भक्त मुझे पुकार रहे होंगे, मुझे उन्हें हाथों से वरदान, नैनों से स्नेह, मुख से वरदानी बोल, अच्छे वाइब्रेशंस, उनके दुख दूर करने के वाइब्रेशंस, उनकी अशांति मिटाने के वाइब्रेशंस देने हैं। उठते ही ये चिंतन करेंगे तो बहुत फ्रेश हो जाएंगे और योग बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति।